अरमान के जहरीले शब्द। तो पैसों के लिए इतना गिर गई कि तूने इतनी बड़ी घटिया हरकत कर दी, तो ऐसा कैसे कर सकती है? ये बोलकर अब नानी माँ ने जितना हो सकता था उतने बुरी तरीके से मोनालिसा के बालों को खींचकर नोचना शुरू कर दिया था। अब आगे नानी माँ को मोनालिसा को इस तरह मारते हुए देखकर अगले ही पल सभी हक्का बक्का रह गए। लेकिन जैसे ही रौनक, राधिका, रश्मि और वंशिका की नज़रें मोनालिसा की थैले से नीचे गिरे हुए चोरी के सामान पर पड़ी तो उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वे तुरंत ही आगे बढ़ीं और अपनी अपनी चीज़ें उठाने लगी। रश्मि ने झुककर एक अंगूठी उठाई और अटकती हुई आवाज़ में बोली, अरे ये तो मेरी रिंग है। वंशिका भी चौंक कर बोली, और ये तो मेरा लॉकेट है। वहीं राधिका और रौनक ने एक साथ कहा, ये तो हमारे ब्रेसलेट है। अपनी अपनी ज्वेलरी को देखकर सबके चेहरों पर अविश्वास और गुस्से के मिले जुले भाव उभर आए। रश्मि अगले ही पल एक एक शब्द चबाते हुए बोली, इसका मतलब इसने हमारे कमरों में भी चोरी की है। ये सुनते ही सारी लड़कियां एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगती हैं। अब उनके चेहरे गुस्से में लाल हो चुके थे और वो सब भी आग बबूला होकर गुस्से से आगे बढ़ीं। अब तो सभी पूरी तरह तैश में आ चुकी थीं और मोनालिसा के पास जाकर नानी माँ की मदद करने लगीं। अब मोनालिसा पर चारों ओर से चांटों और घूंसों की बरसात शुरू हो चुकी थी। उन्होंने मोनालिसा की हालत बद से बदतर कर दी थी और सबने उसे बड़ी बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं अभिमान जी की गोद में बैठा हुआ अंश ये दृश्य देखकर लगातार जोरों से हंसने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो मोनालिसा का इस तरह से पिटना एंजॉय कर रहा हूँ। वहीं अरमान हैरानी और आश्चर्य से उन लोगों की ओर देख रहा था। वहीं अब सारे के सारे लड़के पूरी तरह से हैरानी से भर गए थे और वो सभी आश्चर्य से सोच रहे थे, इन लड़कियों को आखिर हुआ क्या है? ये इतने गुस्से में आगे क्यों बढ़ रही हैं और मोनालिसा को इतनी बुरी तरह से मारपीट क्यों रही हैं? चलो मान लिया कि मोनालिसा ने चोरी की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे पीट पीट कर उसकी जान ले ली जाए। ये सोचकर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ही अपनी अपनी पत्नियों को पकड़ने लगे। वहीं आकाश ने रश्मि को बाहों में भरते हुए कहा, रश्मि ये क्या कर रही हो तुम, उसकी जान लोगी क्या? वहीं सुमित भी राधिका को जकड़कर बोला, राधिका बस करो, उसकी हालत तो देखो। वहीं आहान भी रौनक को पकड़ते हुए बोला, अरे अरे मेरी हवा हवाई, ये क्या कर रही हो तुम, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, हमारे बच्चे पर इसका गलत असर पड़ेगा। ठीक उसी वक्त ध्रुव ने भी वंशिका को डांटते हुए पकड़ लिया, वंशिका तुम तो हमेशा से इतना शांत रहती हो ना, तो आज इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अब उन रहकों की बातें सुनकर चारों लड़कियों के चेहरे पर झुंझुलाहट उभर आई और उनका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। चारों ही अपने अपने पतियों पर चिल्लाते हुए भड़की, छोड़ो छोड़ो मुझे, आप लोग हमें रुकने के लिए कह रहे हैं, ये देखा नहीं आपने, इसने हमारा वो लॉकेट लिया है जो आपने मुझे हमारी लव कन्फेशन मंथ एनिवर्सरी पर दिया था। रश्मि भी झुंझुलाकर बोली, आकाश देखा नहीं तुमने, जब मैंने तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी तब तुमने मुझे ये रिंग दी थी और देखो ये चुड़ैल वही रिंग चुरा कर ले जा रही थी, मैंने आज ही इस रिंग को अपने कमरे की टेबल पर रखा था। वहीं रौनक भी आहान को नाराजगी से देखकर उस पर भड़कने लगी, आहान पता नहीं तुम इतने ज्यादा लल्लू क्यों हो, तुमने देखा नहीं ये मेरा ब्रेसलेट चुरा कर ले जा रही थी, ये हमारे प्यार की निशानी है, क्या तुम भूल गए, तुमने मुझे यही तो पहला गिफ्ट दिया था। छोड़ो छोड़ो मुझे, आज मैं इस मोनालिसा को मंजुलिका बना दूंगी। ये बोलकर चारों अपने अपने पतियों को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, इस बात से बेखबर कि कोई और भी था जो इन लड़कियों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया ही था। वहीं अब नानी माँ मोनालिसा की कुटाई करने के बाद थककर अरमान की ओर देखकर बोली, दामाद जी इसे हमने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, तो अब आप इसे गोली मारकर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगिए। अब जैसे ही बातों में नानी माँ ने सबके सामने अरमान को दामाद जी कह दिया तो अरमान ने नानी माँ को कड़वाहट से देखा। वहीं सभी लोग हैरानी और सहानुभूति से नानी माँ को देखने लगे और साथ ही साथ अभी वे चारों लड़कियां आपस में क्या क्या बड़बड़ा रही थीं ये सोचते ही उन सबका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, क्योंकि अनजाने में वे लोग अपनी अपनी शादी की सच्चाई अरमान को बता चुके थे। अब चारों कपल्स नजरें चुराकर यहां वहां देखने लगे। नानी माँ को जैसे ही एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में सबके सामने अरमान को दामाची कह दिया है तो वो पूरी तरह डर गईं और वो घबराकर सोचने लगी कि कहीं अरमान एक बार फिर से उन्हें उठाकर घर से बाहर न फेंक दे। फिलहाल अरमान ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और मोनालिसा के चेलों की पूरी धुलाई कुटाई करने के बाद उन गार्ड्स के साथ उन्हें वहां से भेज दिया था। फिर अरमान सीधे जाकर अपने किंग चेयर पर बैठ गया। गन अभी भी उसके हाथ में थी। वहीं नानी माँ को लग रहा था कि उन्होंने अरमान को दामाद जी बोला है, इस बात से शायद अरमान का बुरा लगा होगा। वहीं चारों कपल्स यही सोच रहे थे कि अरमान को शायद उनकी शादी का सच पता चल चुका है, तो कहीं वो अब उन्हें उनके पार्टनर से अलग ना कर दे। अचानक से सबके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा एहसास हावी होने लगा। तभी नानी माँ तुरंत हाथ जोड़कर अरमान के सामने खड़ी हो गई और उससे बोई, हमें माफ कर दीजिए, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी जुबान थोड़ी सी फिसल गई, हम आपको दामाद जी नहीं बोलना चाहते थे, हमें आप माफ कर दीजिए। नानी माँ की ये बात सुनकर अरमान ने उन्हें कोल्ड लुक दिया और नानी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी दादाजी तुरंत ही अरमान के पास आए और धीमी आवाज में उसे समझाते हुए बोले, बेटा ये तो क्या कर रहा है, इस बात पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, और जिस तरह से तूने वसुंधरा को गले लगाया और अचानक से हंसने लगा और उल्टी सीधी बातें करने लगा था, तो तेरी ये हरकत देखकर इन गांव के भोले भाले लोगों ने सोचा कि तेरे ऊपर कोई पिशाच का साया है, तेरे भले के लिए ही वो इस तरह की हरकत कर बैठे, अब इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर और इस बात को जाने दे। दादाजी की एक्सप्लेनेशन सुनकर अरमान पूरी तरह शांत रहा, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सबको टकटकी लगाए देखता रहा था। तभी अचानक अरमान का लैपटॉप, जो उसने मोनालिसा से छीना था, उस लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आया। अब देर ना करते हुए अरमान ने उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो उसकी आंखें और भी ज्यादा सख्त हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर बंदूक से अपने सर पर टैप करना शुरू कर दिया। अरमान को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर सबकी आंखें हैरान से चौड़ी हो गईं। उनका चेहरा पूरी तरह फीका पड़ चुका था। वो सब जानना चाहते थे कि आखिरकार अरमान करना क्या चाहता है। कहीं ना कहीं सब इसी सोच में गुम थे। तब सबके दिल दिमाग में चल रही उथल पुथल को भाप कर आस्था थोड़ी हिम्मत जुटाकर अरमान के सामने आकर खड़ी हो गई और एकदम से बोली, मिस्टर सिंघानिया आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज हम सबको जवाब दीजिए। आस्था का सवाल अरमान के दिमाग में तीर की तरह चुप गया था। उसने फिर झुंझलाहट के साथ आस्था को गौर से देखा और लगातार 10 मिनट तक उसने उसके खूबसूरत चेहरे को घूरा और तभी अचानक उसके कानों में अंश के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो अभिमान जी की गोद में था। अगले ही पल अरमान अंश की ओर टकटकी लगाए देख रहा और उसे अपने दिल में कुछ अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। तभी अरमान ने उन चारों कपल्स को बारी बारी से देखा। वो कुछ पल बेहद शांत रहा, फिर अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। इसी बीच आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों ही सारी हिम्मत बटोरते हुए आगे बढ़े और अरमान के सामने आकर एकदम से खड़े हो गए। अब तक उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि अरमान से अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है।
फिलहाल आकाश ने आगे बढ़ते हुए धीमी मगर शांत आवाज में कहा, हम जानते हैं अरमान, तुम्हें अब सच पता चल चुका है और यकीन मानो हमारा तुमसे सच छुपाने का कोई इरादा नहीं था। हम बस तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम ये याद करने की कोशिश करो कि हमारी शादियां कब और किस सिचुएशन में हुई थीं, क्योंकि हमारी शादी तुम्हारे सामने ही हुई थी। आकाश के ये कहते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई अनकहा सच हवा में तैर रहा हो। अरमान बस खाली खाली नजरों से चारों को देखता रहा। चारों लड़कों ने अपनी अपनी पत्नियों को आंखों से कुछ इशारा किया और सभी लड़कियां आकर अपने अपने पार्टनर्स के साथ खड़ी हो गईं। अरमान ने गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ माथे पर रखा। वो अब भी हैरानी और आश्चर्य के बीच खड़ा था। उसी पल उसकी नज़र आहान पर पड़ी, जो रौनक के साथ खड़ा हुआ था। अरमान की नज़रों में सवाल को भांपते हुए आहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में उसे जवाब दिया, हाँ भाई, ये रौनक है, मेरी बीवी, और ये मेरा बच्चा भी पैदा करने वाली है। मैं बाप बनने वाला हूँ भाई, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये कहते हुए आहान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जल्दी ही उसने अरमान को पूरी बात बताते हुए सब कुछ बता दिया। आहान के इस बात को सुनकर अरमान का मन कुछ पल के लिए आश्चर्य से भरा गया था। तभी वंशिका अरमान के पास आई और उसे देखकर दबी हुई आवाज में बोली, हम जानते हैं अरमान भाई कि आपके लिए ये सिचुएशन अजीब सी हो गई है, क्योंकि आपकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जिस वक्त हम सब लड़कियां आपकी ज़िंदगी में आई थीं, उस वक्त की आपकी सारी यादें पूरी तरह से मिटा दी गई हैं, लेकिन इस वक्त आपको अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। आपको अपना पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी ने जानबूझकर आपके साथ ऐसी हरकत की है। अरमान ने सिचुएशन को भांपते हुए खुद को इमोशंस को संभाला। इतना ही नहीं, अभी भी सब लोग इस बात से बच रहे थे कि आस्था के बारे में अरमान को बताएं या ना बताएं। लेकिन दादाजी तुरंत ही अरमान को शक भरी नज़रों से देखकर पूछते हैं, बेटा अगर तुझे इन सबकी शादी के बारे में पता चल चुका है, तो जाहिर सी बात है तुझे अपनी शादी के बारे में भी कुछ पता चल गया होगा। अब जैसे ही दादाजी ने आस्था से रिलेटेड ये सवाल किया, तो ये सुनकर आस्था की सांसें एक पल के लिए थम सी गई थीं और वो अरमान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों देखने लगी। उसका दिल कह रहा था कि उसका पति उसे बोल दे कि मैं जान चुका हूँ कि आस्था मेरी बीवी है, और वो आकर उसे गले से लगा ले। लेकिन वो केवल अपने ख्यालों में ही ये सारी बात सोच सकती थी,
क्योंकि अरमान ने अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया था कि वो आस्था को जानता है और वो उससे प्यार करता है। आस्था ने जवाब पाने की उम्मीद से अरमान को चाहत भरी नजरों से देखा। फिलहाल दादाजी की इस बात को सुनकर अरमान के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। वो बेरुखी से जवाब देते हुए बोला, हाँ दादाजी, मैं पता लगा चुका हूँ कि ये लड़की आस्था अरमान सिंघानिया है और इसकी शादी मुझसे कब कैसे हुई इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही अरमान ने सख्त अंदाज में ये कहा, वैसे ही सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि अरमान ने भले ही सबके सामने आस्था को अपनी बीवी कहा था, लेकिन उसके शब्दों में आस्था के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी और उसकी आवाज़ को सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो आस्था से कितनी ज़्यादा नफरत करता है। अरमान तुरंत उठ खड़ा हुआ और सीधा जाकर अभिमान जी की गोद से उसने अंश को अपनी गोद में ले लिया था और फिर उसके मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बच्चा कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। ज़रूर इस लड़की ने मुझे बहलाया फुसलाया होगा या ज़बरदस्ती मेरे साथ इंटीमेट हुई होगी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं थी, और अगर इसने मेरे बच्चे को पैदा किया है तो ज़रूर इसका कोई मकसद होगा, क्योंकि मैं इन जैसी जालसाज लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये किस तरह अमीरों के घरों में घुस आती हैं और उनके साथ किसी न किसी बहाने से फिजिकल रिलेशन बनाकर उनके बच्चे पैदा कर लेती हैं ताकि उन्हें उस घर में हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना मिल जाए। लेकिन अरमान सिंघानिया ना तो पागल है और ना ही बेवकूफ़। मैं आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान से ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी अपनी बीवी को छोड़ दे, लेकिन मैं इस जैसी गोल्ड डिगर लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अरमान ने बहुत गुस्से में दांत भिंचते हुए ये सब कहा था, जैसे वो दिल की भड़ास निकाल रहा हो। जैसे जैसे अरमान ये सारी बातें बोलते जा रहा था, वैसे वैसे आस्था को ऐसा लगने लगा था मानो जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। वो सारी बातें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़ गए थे और वो तुरंत ही ज़मीन पर बैठती चली गई थी। अपने पति के हर शब्द आस्था के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि आस्था सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी मोहब्बत, अपने पति के मुंह से इस तरह की जहरीली बातें भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। आस्था के कानों में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो करें तो करें क्या। ऑथर नोट, दोस्तों, मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं आपको चैप्टर बहुत लेट दे पा रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और कुछ मेरे मेडिकल इशू भी चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऑब्सेशन के एंडिंग एपिसोड पर ही वर्क कर रही हूँ। अब जैसे ही सभी चैप्टर रेडी हो जाएंगे, मैं एक साथ ही सारे चैप्टर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इसमें कम से कम 20-25 दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, सो प्लीज़ आप सब अपना साथ बनाए रखें। और मैं आप सबके कमेंट्स रीड करती हूँ और सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है। और ट्रस्ट मी, मैंने इस स्टोरी को पूरे दिल से लिखा है, तो मैं इसका एंडिंग भी एकदम परफेक्ट और धमाकेदार बनाना चाहती हूँ। बस पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। इसी टाइम पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब होनी थी कि ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आप लोगों को कम से कम एक चैप्टर भी डेली नहीं दे पा रही, लेकिन कोशिश करूँगी जल्द से जल्द स्टोरी एंड करके सारे चैप्टर एक साथ पब्लिश करने की। प्लीज़ आप सब अपना साथ बनाए रखें।